अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा और पीछे की ओर झटकते हुए गुस्से में बोला, दूर रहो हमसे, हमने कहा ना, तुम्हें कम सुनाई देता है क्या? और जाओ यहाँ से, हमारे लिए तुम सिर्फ एक अनजान लड़की हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं, समझ जाओ इस बात को। अब अंतिका उसके ऐसा करने पर खिसिया गई, लेकिन फिर भी उस खिसियाहट को अपनी मुस्कुराहट के नीचे छिपाते हुए बोली, हाँ जैसे तुमने बोल दिया और मैंने मान लिया। मत मानो, तुम्हारी मर्जी। अभिमन्यु गुस्से में उसे दूर जाते हुए बोला, लेकिन अवंतिका उसके पीछे आते हुए बोली, अरे लेकिन मेरी इस बात का जवाब तो दो, ऐसे बॉडीगार्ड बनकर यहाँ खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे थे? और अब उसका इंतजार नहीं है क्या तुम्हें? इतना बोलकर अवंतिका फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए हंसी। अभिमन्यु को गुस्सा आ रहा था, लेकिन इप्सिता के बारे में सोचकर वो वहीं रुक गया। अभिमन्यु ने अवंतिका की बात सुनकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे अवंतिका की बातों से गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। उसे इतना शांत देखकर अवंतिका ने उसे और भी ज्यादा उकसाते हुए कहा, ओहो अब भी तुम इस तरह से चुपचाप खड़े हो? इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था, तुम यहाँ किसी का बॉडीगार्ड बनकर इंतजार कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें तुम्हारी कुंवरसा वाली पोस्ट से हटा दिया गया हो, इसीलिए अब बॉडीगार्ड का काम करना पड़ रहा है? अभिमन्यु अवंतिका को गुस्से से घूर रहा था। वो उसकी बातें सुनकर भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था अवंतिका उसे उकसाने के लिए ये सब बोल रही थी। अवंतिका ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत अच्छा फैसला लिया। अभिमन्यु अपने गुस्से को और काबू नहीं कर पा रहा था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बस करो, हम यहाँ अपनी मंगेतर का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी ये बेकार की बातें सुनने में हमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अभी यहाँ से चली जाओ। नहीं तो, अभिमन्यु बोल ही रहा था कि अवंतिका ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, नहीं तो क्या करोगे? हमेशा की तरह मुझे चुप करवाने की कोशिश करोगे? वैसे कर भी सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम, कम एंड किस मी। इतना बोलकर अवंतिका अभिमन्यु के करीब जा ही रही थी कि अभिमन्यु ने उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा, बस दूर रहो और मुझे छोड़ दो। अभिमन्यु तेज आवाज में चिल्लाया। इप्सिता, जो वॉशरूम से बाहर आ ही रही थी, ने अभिमन्यु की आवाज सुनी। वो अचानक दरवाजे के पास रुकते हुए बोली, ये तो अभिमन्यु की आवाज है। इतना बोलकर इप्सिता तेज कदमों से वॉशरूम से बाहर निकली। उसने अभिमन्यु के सामने एक लड़की को खड़ा देखा। वो हैरानी से उन दोनों की ओर देखने लगी। इप्सिता अभिमन्यु के पास आई और उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ अभिमन्यु, आप ठीक है ना? आप इस तरह से चिल्लाए क्यों, और ये कौन है? अभिमन्यु गुस्से में था, लेकिन जैसे ही इप्सिता वहां आई और उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा, अभिमन्यु का गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन फिर भी उसने इप्सिता के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। इप्सिता ने अभिमन्यु की ओर देखते हुए कहा, वो एक्चुअली हमने अपनी ड्रेस साफ कर ली है। इप्सिता वहां अभिमन्यु के सामने खड़ी अवंतिका की ओर हैरानी से देखने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता से कहा, चलिए इप्सिता हम बाहर चलते हैं। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनी, लेकिन वो अभी भी अवंतिका को ही घूर रही थी। तब तक अवंतिका इप्सिता के करीब आई और उसने इप्सिता को सिर से लेकर पांव तक घूरते हुए कहा, इस लड़की का तुम इंतजार कर रहे थे, ये है तुम्हारी मंगेतर? सीरियसली, इसमें तुम्हें क्या खास दिख गया? अवंतिका बोल ही रही थी कि इप्सिता उसे घूरते हुए देखने लगी और उसने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इप्सिता ने जैसे ही अवंतिका से ये बात पूछी, अभिमन्यु ने उन दोनों की बात सुनकर अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए अपने मन में सोचा, जिस बात का हमें डर था वही हुआ। हम यही सोच रहे थे कि अवंतिका और इप्सिता एक दूसरे के सामने ना आए, लेकिन वही हो गया। अब क्या करें, हम कैसे सुलझाएंगे इस समस्या को? और ये अवंतिका, ये तो जानबूझकर बुरी बुरी बातें बोलेगी, और अगर इसने इप्सिता के लिए कुछ भी गलत बोला तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलिए इप्सिता हमें यहाँ से चलना चाहिए, बेकार के लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। इप्सिता ने अभिमन्यु को रोकते हुए कहा, एक मिनट रुकिए अभिमन्यु, इसने कुछ बोला है हमारे बारे में और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि कोई हमारे बारे में ऐसी कोई टिप्पणी करे। इप्सिता इतना बोलकर अवंतिका के सामने आकर खड़ी हुई और उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ओ हेलो, क्या कहा तुमने अभी अभी, और तुम्हारी वो बात बोलने का मतलब क्या है, क्या हम जान सकते हैं? अवंतिका इप्सिता को घूरते हुए बोली, वैसे मानना पड़ेगा अभिमन्यु, तुम्हारी ये किराए की मंगेतर में तो कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हुआ है। इप्सिता उसकी ये बात सुनकर अभिमन्यु की ओर देखते हुए बोली, वॉट, किराए की मंगेतर? तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या बकवास कर रही हो? अभिमन्यु ने जैसे ही अवंतिका की ये बात सुनी, वो इप्सिता के बगल में आकर खड़ा हुआ और उसने अवंतिका की ओर घूरते हुए कहा, अवंतिका दिस इज इनफ, हम तुमसे पहले ही बोल चुके हैं, हमसे और हमारी मंगेतर से दूर रहो। जैसे ही इप्सिता ने अभिमन्यु के मुंह से अवंतिका नाम सुना, इप्सिता समझ गई कि ये अभिमन्यु की एक्स गर्लफ्रेंड है, इसीलिए अभिमन्यु उस पर चिल्लाया था। जैसे ही इप्सिता को ये बात समझ में आई, उसने अवंतिका को घूरते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि किसी दूसरे के मंगेतर के साथ इस तरह वॉशरूम के सामने खड़े होकर बात करना ये अच्छे व्यवहार में नहीं आता? अवंतिका ने अभिमन्यु की ओर देखते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा, दुनिया वालों को तुम बड़ी आसानी से पागल बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं अभिमन्यु को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मेरे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता, शादी करना तो दूर, इस बारे में सोच भी नहीं सकता। क्यों अभिमन्यु? अभिमन्यु उसकी बात सुनकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, बस करो, इतना काफी है। अभिमन्यु को इस तरह चिल्लाते देखकर अवंतिका हंसते हुए बोली, तुम्हारी निराशा और गुस्सा इस बात को साफ जाहिर कर रहा है कि तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो, मुझे और बाकी सबको ये दिखाने के लिए कि तुम मुझे भूल चुके हो और आगे बढ़ चुके हो। इसीलिए इस लड़की को अपने साथ लेकर आए हो ना, ताकि कोई तुम्हें दिल टूटा अकेला ना समझे। इप्सिता ने अभिमन्यु की ओर देखा, वो गुस्से में था लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कुछ भी नहीं बोल रहा था। इसीलिए उसकी ओर से जवाब देते हुए इप्सिता अवंतिका के सामने आकर बोली, मानना पड़ेगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो तो तुम्हारे जैसा। तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि अभिमन्यु तुम जैसी लड़की को भूल नहीं पाएगा? शक्ल देखी है तुमने अपनी? हम तो ये सोच रहे हैं कि अच्छा ही हुआ जो तुम्हारा अभिमन्यु से ब्रेकअप हो गया, वरना शायद हम अभिमन्यु से कभी ना मिल पाते। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत ही नहीं कि तुम्हें अभिमन्यु जैसा कोई जीवन साथी मिले। इसीलिए आई एम सो हैप्पी कि तुम अब अभिमन्यु की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हो। इतना बोलकर इप्सिता ने अभिमन्यु की बाहों को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया और उसने अभिमन्यु की ओर देखते हुए कहा, एंड यस, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम अभिमन्यु की कोई नकली मंगेतर नहीं है, हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। वैसे तुम चाहो तो हमारी शादी में भी आ सकती हो, जिससे तुम्हें यकीन हो जाए। इप्सिता इतना बोलकर अभिमन्यु की ओर देखते हुए बोली, चलिए इप्सिता, हम चलते हैं, वहाँ पार्टी में सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इतना बोलकर इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाते हुए कसकर पकड़ लिया। अभिमन्यु भी इप्सिता के इस व्यवहार को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वहीं सामने खड़ी अवंतिका इप्सिता को घूर रही थी। उसने इप्सिता की ओर गौर से देखा और अपने मन में कहा, इस लड़की को देखकर हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमने इसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है बस वो याद नहीं आ रहा। इप्सिता अभिमन्यु की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, चलें?
अभिमन्यु ने धीरे से हाँ भरी और वो इप्सिता पर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा था, जिस तरह से उसने पूरी स्थिति संभाली और उसकी ओर से ये सब कुछ बोला। अवंतिका खिसिया गई थी और उसे वहाँ छोड़कर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वॉशरूम कॉरिडोर से बाहर निकलने लगे। अवंतिका अभी भी गुस्से से उन दोनों को घूर रही थी। अभिमन्यु और इप्सिता वहां से जाने लगे कि अवंतिका भी तेज कदमों से आगे बढ़ी और पीछे से आवाज लगाते हुए बोली, झूठ मत बोलो, क्योंकि सच क्या है मैं जानती हूँ, और जो झूठ बोलते हैं वही इस तरह से भागते हैं, और तुम दोनों भी भाग रहे हो, इसका मतलब मेरा शक सही है। उसकी ऐसी बातें सुनकर चिढ़ते हुए इप्सिता अपनी जगह पर रुक गई और उसके साथ ही अभिमन्यु को भी रुकना पड़ा, जबकि वो वहां रुकना नहीं चाहता था क्योंकि वो अवंतिका को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उनके रुकने का फायदा उठाते हुए अवंतिका भी भागकर आगे आई और उन दोनों के आगे जाकर उनका रास्ता रोकते हुए बोली, रुको एक मिनट, और क्या कहा तुमने, अभिमन्यु तुमसे शादी करेगा? दिस इज द जोक ऑफ द डे, मैं अभिमन्यु को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मेरे बाद किसी और लड़की को डेट तक नहीं कर पाया, तो वो शादी क्या तुमसे खाक करेगा। अभिमन्यु अवंतिका की ये बात सुनकर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, अवंतिका बस करो और दूर रहो, हमारे रास्ते से हटो, और हम तुमसे अब और कोई भी बात नहीं करने वाले हैं, और हम ये भी नहीं चाहते कि तुम हमारी मंगेतर से कोई भी बात करो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हम दोनों से दूर रहो। अभिमन्यु ने परोक्ष रूप से उसे चेतावनी दी, लेकिन फिर भी अवंतिका की ओर देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे अभिमन्यु की इन बातों से जरा भी फर्क पड़ा हो। अवंतिका अभिमन्यु की ये बात सुनकर बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर क्यों आज भी जब मैं तुम्हारे करीब आती हूँ तो क्यों तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और तुम्हारे दिल में दबा हुआ वो प्यार जो सिर्फ मेरे लिए था वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है ना? और रही बात इस लड़की से शादी करने की, तो आई एम 100% श्योर तुम इससे शादी नहीं करोगे, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इसे सिर्फ दिखावे के लिए अपने साथ लेकर आई हो। अवंतिका की ऐसी बातें सुनकर इप्सिता को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो बार बार उनके रिश्ते को लेकर सवाल कर रही थी और उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए हंस भी रही थी, इसलिए इप्सिता अवंतिका को घूर रही थी। इप्सिता ने अपने मन में सोचा, ये बार बार वही सारी बातें दोहराकर अभिमन्यु को दुख देने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये सब बोल रही है, हमें कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे अवंतिका को इस बात पर यकीन हो जाए कि हम दोनों सच में शादी करने वाले हैं, और इसलिए वो चुप हो जाए, लेकिन हम ऐसा क्या करें? इप्सिता ने अवंतिका को घूरते हुए कहा, ओ हेलो, हम दोनों तुम्हारे साथ बहस करके अपना और समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते, और ना ही तुम्हें कुछ साबित करना चाहते हैं, क्योंकि तुम इसके लायक भी नहीं हो। चलिए अभिमन्यु, क्रमशः